जयमा, तो अगर एक दृष्टि से देखें तो योग वास्तव में क्या है? वही सब फैकल्टीज, पावर्स, जो क्षमताएं हमारी, जो हमें दिया है भगवान ने, उन्हीं को हम संसार की तरफ, सांसारिक जो उससे उपलब्धियां हैं वो मिलेंगी, लाभ, उसकी जगह जब हम उसको भगवान की तरफ मोड़ देते हैं तो वो योग का प्रारंभ है। और जब वही सारी क्षमताएं जो संसार की तरफ मुड़ी थी भगवान से जुड़ जाती हैं तो वो योग हो जाता है। बहुत एक फंडामेंटल चीज यही है योग की। तो बाहर तो शरीर, प्राण, हमारी श्वास, इसके बारे में तो बहुत बातें होती हैं, किंतु तीन मुख्य जो हमारी विधाएं हैं या क्षमताएं हैं, एक है बुद्धि, दूसरा है हृदय में भाव, और तीसरा है हमारे प्राण के अंदर जो ऊर्जा है, संकल्प है। ये तीन मुख्य हम सबको दी गई हैं, इसीलिए कोई अनाथ नहीं है, सबके अंदर ये है। और अगर ये ना ऑपरेट करें, एक्टिव हों, तो वास्तव में उस व्यक्ति को खुद ही नहीं पता है कि वो, मतलब वो पशु की तरह। हम लोग कई बार कहते हैं अरे भगवान ने इसको इतना, अभी ये सब प्रोटेस्ट हो रही है, हो रही है, सबको दिया है भगवान ने। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई अन्याय भगवान की तरफ से हुआ है, मनुष्य करता है अन्याय, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को जिसको हमें दिया गया है, अगर हम इसका सही उपयोग करें तो वो हमको कहाँ से कहाँ ले जाएंगी, और इन्हीं चीज़ों का अगर हम दुरुपयोग करें तो ये हमको विनाश भी कर देंगी। ये फ्रीडम भगवान ने दे दी है हम सबको। तो अब यहाँ पर हम लोग जब भक्ति योग की ओर आते हैं तो वहाँ पर प्रधान जो तत्व है, प्रधान जो हमारे अंदर क्षमता है जिसको भगवान से जोड़ना है या उनकी ओर मोड़ना है पहले, वो है भाव। तो कर्म में संकल्प और कर्म शक्ति, ज्ञान योग में बुद्धि या इंटेलिजेंस, और यहाँ पर हमको भाव। अब भाव का जो जगत है बहुत सारे भावों से भरा हुआ है। कई बार कौन सा भाव हम जोड़े भगवान के साथ, तो वास्तव में एक तरह से सारे भाव, यहाँ तक बात कही गई है जो बाद में शेरविंद बताएंगे, इस चैप्टर में नहीं है। इवन वैर भाव से जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भी हम जुड़ जाते हैं। वैर भाव से पूरा हिरण्यकश्यप की और रावण की साधना, कंस की साधना वैर भाव से है। वैर करता है तो हर समय चिंता करता रहता है भगवान की ये तो अंत में वो, लेकिन ये तरीका सही नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही वो उनकी आत्मा तो जुड़ जाती है पर वो बाकी सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये पर्पस नहीं है योग का, फुलफिलमेंट की तरफ। तो भाव में हमारे नाना प्रकार के भाव होते हैं। तो सबसे पहले जो भाव जुड़ता है, जो हमारा सबसे प्रिमिटिव भाव है, इसीलिए माँ उसको कहती हैं द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ फॉल्सहुड, वो है भय। अब ये सबसे पहले, क्योंकि जब वो भगवान के, इसलिए राक्षस असुर जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो एक ऐसी शक्ति कि अगर मुझे ये शक्ति मिल जाए तो न जाने क्या हो जाएगा, मैं संसार का विजेता हो जाऊँगा, तो वो शक्ति की ओर मुड़ते हैं। और प्रारंभ में उनका आकर्षण इसी कारण होता है, और वो भगवान से बहुत भय खाते हैं क्योंकि वो भय जो है उनके अंदर एक इसको पोषित करता है। भय बड़ा विचित्र है, भय दूरी भी बनाता है, और भय तुमको वो चीज़ जिसे तुम भय खाते हो, तुम चाहते हो ये मेरे पास भी आ जाए। तो ये भक्ति का जो प्रारंभ रिलीजन्स में, खासकर सेमेटिक रिलीजन्स में अगर हम देखें, जूइश में तो बहुत ही अधिक, लेकिन काफ़ी हद तक इस्लाम में और इवन क्रिश्चियनिटी में, जो बड़ा आश्चर्य है, कई बार मुझे आश्चर्य होता है, वहाँ पे भी वो जब भगवान को रिवार्ड एंड पनिशमेंट, फियर, ये क्यों आया है मुझे मालूम नहीं कहाँ से, पर निश्चित रूप से ये डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ये जूइश और क्रिश्चियन रिलीजन एक दूसरे के बहुत करीब थे, क्योंकि क्राइस्ट ने तो प्रेम का मैसेज दिया था। अगर हम सही ढंग से देखें, वो तो ये कहते थे कि भाई तुम कन्वर्ट हो, नहीं कन्वर्ट हो, सिनर हो, कोई भी हो, भगवान का स्पर्श आपको फॉरगिव करता है और ऊपर ले उठाता है। लेकिन जूइश रिलीजन में भय और जस्टिस ये बहुत प्रोमिनेंटली स्ट्रांग है। यही चीज़ हम लोग इस्लाम में भी देखते हैं, काफ़ी स्ट्रांग है। इसीलिए माँ एक जगह कहती है बोथ आर ब्रदर्स देयर फॉर द फाइट। तो खैर ये तो उनकी रिलीजियस मानसिकता हो गई। भारतवर्ष में क्या है, भगवान भारतवर्ष में भय है, लेकिन बहुत ही एक उसका पार्ट बहुत स्मॉल है। तो अब अगर आप देखें ट्रेडिशनली इस्लाम और ज्यूइश रिलीजन में, तो आपने कुछ अगर गलत किया है, भगवान के विरुद्ध किया है, तो आपको उसका पनिशमेंट लेना है। आप प्रे करिए लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी पनिश्ड, फिल्म में हम लोग देख रहे थे, ये जो अभी ओडिसियस पिक्चर में क्या दिखाते हैं, वो बार बार कहता है, वो याद करता है, कहता है कि अब हमारे ऊपर भगवान का कहर टूटेगा, जब वो नाव में जाते हैं और कहर टूटता है, पोसेडोन जो समुद्र के देवता हैं और रुद्र हमारे यहाँ के रुद्र हैं जो तूफान लाते हैं, बाढ़ ये सब ले आते हैं, प्रकोप, प्रकृति के प्रकोप, तो वो कहर टूटता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, सिवाय इसके जो फेवरेट है माँ दुर्गा का ओडिसियस। तो ये भय का बहुत बड़ा समावेश उन रिलीजन्स में, भारतवर्ष में भय है लेकिन उसको एक अर्ली अप्रोच के रूप में उसका शमन भी है कि भाई अगर तुमको भय लगता है भगवान तुम्हें दंड देंगे तो तुम इससे मुक्त हो सकते हो, तो कर्म फल से मुक्त होने की जो सारी सिस्टम है वो भारतवर्ष में है। लेकिन भय प्रारंभ हो सकता है पर अंत नहीं हो सकता, तो इसीलिए भारतवर्ष में हर प्रकार के भाव को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया है जिसमें निम्नतम है भय और उच्चतम है प्रेमी प्रेमिका का या बिलवेट का। प्रेमी प्रेमिका में एक जेंडर आ जाता है, यहाँ जेंडर नहीं है क्योंकि भय दूरी करता है लेकिन कहीं ना कहीं एडमायर करता है कि अरे वो बड़े महान हैं। भय के बाद कौन सा भाव आता है, राजा का, कि भगवान तो राजा हैं, जस्टिस, न्याय देते हैं, ये भी एक प्रिमिटिव भाव है लेकिन वो भय से बेटर है कि दंड और रिवार्ड की जगह वो न्याय देते हैं, अब न्याय थोड़ा एक स्टेप बेटर हो गया। उसके बाद आता है भगवान से दाता का संबंध, तो दाता में ही हम भगवान से मांग लिया, हमने पिता हैं माता हैं तो उनसे मांग लिया। साथ ही एक संबंध आता है गुरु का संबंध, गुरु हमको गाइडेंस देते हैं, हमारे मास्टर हैं, हमको सिखाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, जीवन कैसे जीना है, आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन सर्वोच्च संबंध श्री अरविंद दे जाते हैं वो बिलवेट का संबंध है कि वो जिनसे हम प्रेम के कारण केवल और केवल जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, तो वो हमको एकत्व तक ले जाता है। और अगर बिलवेट के बाद कोई संबंध आता है वो है मदर का संबंध, माता का संबंध, और श्री अरविंद बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। एक है पिता का संबंध, ये आप देखेंगे सेमेटिक रिलीजन में गॉड इज फादर, भारतवर्ष में इतना अधिक फादर का कंसेप्ट नहीं है जितना माँ का है भगवान के साथ संबंध में, या मित्र का है, श्री कृष्ण मित्र हैं और शिव जी को हम फादर बोल के नहीं आमतौर पे कहा जाता है, हालांकि एक पर्टिकुलर सेक्ट है जो उनको पिता के रूप में देखता है, परंतु आमतौर पर वो आशुतोष हैं, उनको आप प्लीज करते हैं, वो शक्ति के प्रतीक हैं। तो फादर में एक थोड़ी दूरी होती है, पिता से बच्चे पूरी तरह खुल नहीं पाते आमतौर पर, लेकिन माता के साथ जो संबंध है बड़ा अनन्य होता है, पिता से बेटर होता है, नेक्स्ट लेवल होता है मित्र का, जो श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रारंभ किया, भगवान से मित्रता, मित्र से भी ऊपर माँ का संबंध होता है। माँ हमें गर्भ से जानती है, सब कुछ जानती है हमारे बारे में, आवश्यकता पड़े तो डांट देती है, और जो जो हमको हमारी आवश्यकताएँ मेटीरियल भूख से लेकर स्पिरिचुअल भूख तक सबकी वो देखभाल करती है। इसलिए माँ के साथ संबंध ने बहुत ही प्रबल रूप लिया है और हाईएस्ट में आता है ये कैटेगरी में। इसके बाद जो बसता है वो केवल बिलवेड और प्रेमी का, प्रेमी और परम आराध्य या प्रेमी, वो संबंध जिसके अंदर अंत में, प्रारंभ में प्रेम में भी वो इन्फीरियर मोटिव्स आते हैं लेकिन अंत में प्रेमी के साथ आप केवल एक होना और मिलना यही चाहते हो। ये सारी एक रेंज है गॉडवर्ड इमोशंस की, उसको श्री अरविंद इस चैप्टर में बड़े सुंदर ढंग से विस्तार से बताते हैं। ये पेज है द गॉडवर्ड इमोशंस, भगवद उन्मुख भाव, चैप्टर 3 ऑफ द योगा ऑफ डिवाइन लव। The principle of yoga is to turn Godward all or any of the powers of the human consciousness so that through that activity of the being there may be contact, relation, union. इससे बढ़िया सुंदर एक लाइन की डेफिनेशन नहीं, कोई एक्सरसाइज, ये सब अगर आपके अंदर वो एस्पिरेशन नहीं है आप करते रहिए, पूरे जीवन आप हठ योग आसन करते रहिए, श्वास पर कंट्रोल करते रहिए, लेकिन मुख्य चीज है आपकी चेतना भगवान की ओर मुड़ी है कि नहीं। आपने 25,000 का कोर्स कर लिया, आपने अंदर इंजीनियरिंग का और आपने श्वास श्वास सब सीख लिया, लेकिन आप क्यों कर रहे हो? हो सकता है कि हमारा मोटिव असुरों वाला हो, क्या कि मुझे बहुत सक्सेस मिलेगी, तो ये फिर योग नहीं है। आप कर रहे हो वही एक्सरसाइज लेकिन योग नहीं है। जबकि जब हम कोई भी चीज करते हैं, चाहे वो बाहरी फिजिकल एक्सरसाइजेज हों या हम कि कर्म कर रहे हों, अगर वो भगवान से जुड़ने के लिए, तब वो योग प्रारंभ होता है. सो टर्निंग ऑफ द फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन नेचर इन द योगा ऑफ भक्ति, इट इज द इमोशनल नेचर दैट इज मेड द इंस्ट्रूमेंट. तो हम भगवान के प्रति कॉन्शियस नहीं है. कई बार लोग कहते हैं हाँ लेकिन प्रकृति के प्रति तो हैं, भावनाओं की तरंगें उठती हैं हम जानते हैं, विचार उठते हैं उनको तो हम जानते हैं, संकल्प नाना प्रकार की इच्छाएं उठती हैं उनको तो जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए. बिना कॉन्शियस हुए योग नहीं प्रारंभ होता है. अब हम अगर स्टडी करेंगे विटनेस बन के, साक्षी बन के अपने ही भावों का, तो हम देखेंगे कि हमारे भाव किधर किधर जा रहे हैं. तो योग और भक्ति में क्या होता है, जैसे कर्मों में हमारे कर्म किसी बाहरी लाभ के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्मयोग नहीं हो गया. हम चाहे बहुत ऑनेस्टली कर रहे होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे, कर्मयोग तब होता है जब हम किसी और लाभ के लिए नहीं, केवल भगवान का काम करने के लिए, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए कोई भी काम करते हैं, तब वो कर्मयोग बनता है. उसी प्रकार से बुद्धि योग, बुद्धि योग हम इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा हमने किताब पढ़ ली, उस पर लेक्चर दे दिया, हमारा बड़ा नाम हो गया, तब वो बुद्धि योग नहीं है. बुद्धि योग है जब हम बाहर की जगह अंदर की गति को समझने का प्रयास करते हैं, भगवान की ओर मुझे क्या ले जाएगा, कैसे मेरी बुद्धि भगवान का एक चैनल बन सकती है, तब बुद्धि योग होता है. उसी प्रकार से जब हम अपने अंदर नाना प्रकार के भावों की उठते गिरते समूह को देखते हैं, अब देखिए ज्ञान योग में इन भावों को स्टिल किया जाएगा. भक्ति योग में जैसे जूडो, कई बार मैं ये करता हूँ, जूडो क्या करता है, जूडो का प्रिंसिपल ये है, आप जो अपोनेंट है उसकी ही ऊर्जा को उपयोग में लाते हो उसको पछाड़ने के लिए, प्रिंसिपल है जूडो का. तो उसी प्रकार से इनफैक्ट बेसिक दांव उसका होता है कि आपने हाथ मिलाया, दोनों खींच रहे हैं, अब जब वो खींच रहा है आपको, तो उस समय इफ यू वेयर टू टेक ऑफ दी हैंड, वो अपने ही बल से गिर जाएगा. तो अब भक्ति योग में जो हमारी भावनाएं इधर उधर जा रही हैं दुनिया भर की ओर, तभी कहा गया ना तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, उन सबको भगवान की ओर मोड़ना है. तो ये गॉडवर्ड इमोशंस, और इससे क्या होगा, इट्स मेन प्रिंसिपल इज टू अडॉप्ट सम ह्यूमन रिलेशन बिटवीन मैन एंड द डिवाइन बींग. जैसा हमारा संबंध होगा वैसी हमारी यात्रा होगी. हम ये मान के चलेंगे भगवान गुरु हैं तो गुरु जैसे व्यवहार होगा, गुरु क्या करते हैं हमको शिक्षा दे देते हैं, हमको करना है काम. इसीलिए माँ को जब कोई गुरु कहते थे, कहते ओ आई सी दैट यू हैव रिड्यूस्ड मी, मुझे तुमने एक गुरु बना दिया. गुरु तो फिर माँ कहती है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं एक वहां चेयर पे पेडेस्टल पे बैठ जाऊं, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी. अब सोचिए गुरु क्या करते हैं, गुरु तो आपको लेसन दे देंगे, आप अगर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कर्मों के हिसाब किताब से चलेंगे. माँ क्या करेंगी, माँ कभी ये नहीं कहेगी कि तेरे कर्म है, तो लौटा था ना कि देखा मैंने मना किया था तो कीचड़ में गया था, अब गंदा हो गया है तो गंदा हो. माँ ये नहीं करेगी, माँ डांटेगी, डांटते डांटते आपको निलाएगी भी, दोनों काम करेगी, और निलाने के बाद भोजन भी खिलाएगी क्योंकि माँ को पता है कि आप पीड़ित हो. भोजन खिलाने के बाद फिर शिक्षा देगी कि देखो ये करने से ये होता है. तो इसलिए इस योग में गुरु का पहले ये क्लियर हो जाए कि गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, इसीलिए इस योग में इनिशिएशन नहीं है. माँ कोई बच्चे को इनिशिएट नहीं करती, देख मैं तेरी माँ हूं. ये जब आप स्कूल जाते हो ना तब आपको पता करना होता है मेरे शिक्षक कौन है. माँ क्या करती है, बच्चा पहचान लेता है. तो इस योग में माँ कहती है व्हेन आई से आई हैव इनिशिएटेड समवन इट मींस आई हैव रिवील्ड माई सेल्फ टू दैट पर्सन. आपके अंदर यदि ये भाव जाग गया, भाव है ये, इमोशंस की बात हो रही है कि ये माँ है, दैट्स फिनिश्ड. ये भाव नहीं जागा, आपने श्री अरविंद को पढ़ लिया, एडमायर कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेक्चर दे रहे हो, तो अभी आपकी योग यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है इन द रियल सेंस. तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि यहां पर ये बात वो कह रहे हैं. बाई विच थ्रू द एवर इंटेंसर फ्लोइंग ऑफ द हार्ट्स इमोशंस टूवर्ड्स
हिम द ह्यूमन सोल मे एट लास्ट बी वेडेड टू, क्या पंक्ति है, एंड ग्रो वन विद हिम इन ए पैशन ऑफ डिवाइन लव। अब समझ आया कि भगवान हमारा दिल बार बार क्यों तोड़ते हैं। जब दिल तोड़ते हैं तो क्या होता है, इमोशन निकलते हैं। पहले हम क्या कहते हैं, अरे भगवान तूने मेरे से ऐसा क्यों किया, मेरा दिल क्यों तोड़ा, वो कहते हैं अभी ये मेरे लिए रिजर्व करके रख। पर हम लोग मूर्ख हैं, फिर दिल लगाते हैं, फिर तोड़ते हैं, अंत में क्या करते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर भक्ति योग में जा रहे हो ना तो बी केयरफुल, भगवान कोई ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं। अल्टीमेटली आपका दिल वहीं पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही का, भगवान के चरणों में ही लगेगा। पर ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जाते हैं। प्रोसेस पता चल जाए तो बड़ा मजा आता है, समझ नहीं आता कि जब दिल टूटा तो खुश हुए कि दुखी हुए। हो सकता है बाहर की नर्व्स दुखी हो रही हो, अंदर में सोल करती है तेरी तलवार के नीचे नचियां करके थैया थैया। ओके, एवरी फीलिंग दैट कैन मेक द हार्ट रेडी फॉर दिस एक्सटेसी द योगा एडमिट्स, एवरीथिंग दैट डिट्रैक्ट्स फ्रॉम इट मस्ट इंक्रीजिंगली ड्रॉप अवे एज द स्ट्रॉन्ग यूनियन ऑफ लव बिकम्स क्लोजर एंड मोर परफेक्ट। इसमें एक ही नियम है और कोई नियम नहीं है। जो चीज आपके और भगवान के मिलन में बाधक है, परिवार हो, घर हो, दोस्त हो, साथी हो, संगी हो, मस्ट ड्रॉप ऑफ। और जो चीज भगवान के मिलन में हेल्पफुल है, चाहे वो घर से भाग जाना हो, इज वैलिड एंड एक्सेप्टेबल। हुआ है यहां पे, ऐसे लोग हैं आप देखो मिलोगे, 18 साल 17 साल 18 साल 19 साल की उम्र में। अब इनसे पूछोगे आप क्यों आए, कहते पता नहीं उनको, मतलब मन में एक भाव उठा, ये नहीं था कि घर में कोई प्रॉब्लम थी। आई कैन टेल यू सबके घरों में सब अच्छा था, मैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक आया, जाना है माता जी के पास जाना है, आगे अब क्यों आए। तो अब उनके पेरेंट्स भी आए कईयों के, बट दे डोंट गो बैक। कोई लॉजिक नहीं है इसकी, पर वो हार्ट जो है ना वो भगवान में क्यों जुड़ गया या भगवान ने क्यों उसको जोड़ लिया, दैट इज द होल गेम। अब वो पहले, अब ये चीज देखिए, भावों का उपयोग केवल रिलीजन में होता है, रिलीजन नहीं तो कर्म जीवन में आप कर्म कर रहे हो, रिलीजन में करो या ना करो इट डजेंट मैटर, आपको पूजा पाठ करना है। ज्ञान का उपयोग रिलीजन में करो ना करो जनरली डिस्करेज करते हैं, कहते हैं ज़्यादा प्रश्न मत करो। लेकिन भाव एक ऐसी चीज़ है जो रिलीजन में भी आती हैं। तो रिलीजन को अगर आप देखें तो वो भक्ति योग का एक बहुत ही डिमिनिश्ड आउटवर्ड शेल है, वो एक तरह की तैयारी है अल्टीमेटली। तो यहां रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन रिलीजन अपने आप में भक्ति योग नहीं है, क्योंकि उसमें आमतौर पर हम लोग जो करते हैं वो एक मैकेनिकल ड्यूटी के रूप में करते हैं, हम भाव से नहीं करते हैं। और भाव से भी जब करते हैं तो कई बार, इसीलिए तीन तरह के भक्त श्री अरविंद इसमें भी बताते हैं, गीता में है, जब तक आपके अंदर आर्थ अर्थार्थी या जिज्ञासु का भाव है तब तक सच्ची रूप में भक्ति नहीं प्रारंभ हुई है। असल भक्ति प्रारंभ होती है जब आप भगवान को भगवान के लिए प्यार करते हैं, उनसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे हैं वैसे हैं कैसे हैं, ये सब खत्म हो जाता है, एक प्रोसेस से चली जाती हैं चीज़ें। तो रिलीजन को श्री अरविंद बताते हैं एक प्रिपरेटरी मूवमेंट है, और उसमें रिलीजन में अधिकांश क्या होता है, भगवान से भय, भय भय करते हैं, क्यों कि भाई पुरस्कार देंगे दंड देंगे, ये होता है। फिर यही भय आगे बढ़ के जस्टिस का रूप ले लेता है जो एक स्टेप हायर है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि भय की समस्या क्या है। एक और कहते हैं कि भय का बहुत बड़ा रोल रहा है रिलीजन में, इट रिगार्ड्स गॉड एज द गॉड फियरिंग मैन इज द टिपिकल वर्शिपर ऑफ दीज रिलीजन्स, द सेंटिमेंट ऑफ फियर इज इंडीड परफेक्टली कंसिस्टेंट विद डिवोशन ऑफ ए सर्टेन काइंड एंड अप टू ए सर्टेन पॉइंट, at its highest it rises into a worship of the divine power, the divine justice, divine law, divine righteousness and ethical obedience, an odd reverence for the almighty creator and judge. ki bhai nahi bhagwan ne mana kiya hai hum aisa nahi karenge kyun क्यों? क्योंकि आपको भय है, आप कर रहे हो वो काम जो भगवान ने मना किया, ओबीडियंस है। लेकिन ओबीडियंस के पीछे क्या है? भय है कि कहीं भगवान मैं गलत ना कर दूं, गलत होने से गलत के परिणाम ना हो, कुछ ना कुछ। इसीलिए कई बार ये मिस्टिक्स जो थे उन्हें क्या कहते हैं, यही तो पहले भी मैं कह चुका हूँ, ए शेख क्या पाएगा गुलफिशानी करके, क्या पाएगा तौहीने जवानी करके। तो आतिशे दोजक, दोजक इज हेल, सूफी मिस्टिक पोएट्री। सूफिज्म में भक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इससे भक्ति मार्ग ऑफ वन काइंड। तो आतिशे दोजक से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके। अब श्री रामकृष्ण परमहंस ने गिरीश घोष को यही बताया था, वो कहते हैं कि मैं तो भाई शराबी कबाबी सब हूं, आपको मैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं प्यारे लगते हैं, लेकिन मैं ये योग वोग मत बोलना, मैं तो ड्रामेबाज हूं बोल दिया। कहते कर तू जो करता है कर, हाँ हाँ जो करता है कर, बस तू करने के पहले मुझे अर्पण कर देना, मेरा नाम ले लेना। कहते इतना ही करना है, हाँ तेरे नहीं इतना ही है कुछ और नहीं। वो शुरू किया उन्होंने कहा ये तो बड़ा सिंपल है, ये मैं कर लूंगा ये योग। अब वो करना प्रारंभ करें तो वो कहते ये तो बड़ा मुश्किल है, तुम्हारा नाम लेके मैं दारू कैसे पीऊं। बिकॉज ही लव्ड हिम, प्रेम करते हैं कि ये तो मतलब तुमको मैं ये पिला रहा हूं, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं। तो ये भाव से धीरे 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 उनके अंदर, क्या वंडरफुली हीरोज। तो ये भक्ति मार्ग ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं कि हड़ताल वो लेके, आपका संबंध है भगवान से, वो संबंध कोई ड्यूटी नहीं है, मैकेनिकल ड्यूटी नहीं है, वो एक आंतरिक चेतना, आंतरिक भाव है जो मुड़ जाता है भगवान की ओर प्रारंभ में। लेकिन ये भय, इट रिगार्ड्स गॉड एज द किंग एंड डज नॉट अप्रोच टू नियर द ग्लोरी ऑफ हिज थ्रोन अनलेस जस्टिफाइड बाय राइटियसनेस। ये लोगों का भाव होता है ना, हमको काम मिला है माता जी के करीब, हम राइटियसनेस, हम विशेष हैं, कुछ नहीं ऐसा भक्त हंसेगा क्या पता अंदर से तुम दूर हो कि पास हो। लेकिन ये एक लॉजिक, कई लोग ये सोचते भी अप्लाई करते हैं, आश्रम के कंटेक्स्ट में भी करते हैं, जो समाधि में काम कर रहे हैं माता जी के रूम में वो बड़े विशेष लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हम जब भगवान को एक जस्टिस के रूप में देखते हैं तब हमको ऐसा लगता है। तो ये, लेकिन ये भाव का अपना एक मान्यता होती है कि चलो कम से कम हम ऐसे बने। लेकिन इट कैनॉट एम्ब्रेस द डिवाइन विद ऑल द फियरलेस कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड इन इज मदर और ऑफ द लवर इन इज बिलवेड और विद दैट इंटीमेट सेंस ऑफ वननेस विच परफेक्ट लव ब्रिंग्स विद इट। भय की समस्या यही है कि दूरी रहती है। जो प्रेम करता है, कई बार ना लोग कहते हैं अरे वहां पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बोलते हैं लोग कई बार कि यहां पर, तो मैं तो पूछता भी हूं तो कहां पे क्या अलग कहा बताओ भगवान, कहां नहीं है कहां नहीं है, कहां करूं अब वृत्तियां है मनुष्य के अंदर। जब आप इस भाव से करते हो कि भगवान सर्वत्र हैं, तब वो देखिए जीवन बदलना शुरू होता है। ऐसा करते हैं लोग कई बार कि भाई ये मां का सिंबल नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारी तो वृत्तियां सही नहीं है। मैंने कहा अरे भाई सिंबल पहनोगे, हो सकता है चांस है तुम्हारा, कम से कम वो देख रही है सारा, तुम छिपा छिपा के कर रहे थे कि भगवान नहीं देख रहा है। कोई जगह है जहां पे भगवान नहीं है? तो शेरविंद ये फिर से हम पढ़ेंगे, इन इट कैनॉट एम्ब्रेस, व्हाट कैनॉट एम्ब्रेस फियर। भगवान एक न्यायाधीश है, भगवान एक वो पावर है जिनसे डरना चाहिए। इट कैनॉट, इट से उसका रेफरेंस है, कैनॉट एम्ब्रेस द डिवाइन विद ऑल द फियरलेस कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड। अरे हम गिरेंगे पड़ेंगे चोट लगेगी, हम कहां जाएंगे? मां के पास जाएंगे थोड़ी, कोई कहेंगे मां मेरे से भूल हो गई अभी आपको तो नहीं बताऊंगा, आप मुझे डांटोगे मारोगे। अरे वो तो हो सकता है वो एक थपड़ी भी लगा दे पर पुचकार करके करेंगी, उनको पता है अगर थप्पड़ जरूरत है थप्पड़ भी लगेगा, लेकिन साथ में अपनी छत्र छाया में लेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, आगे हमारे साथ ये ना हो ये सुनिश्चित करेंगी। मां तो मां है, कुछ भी करेगी लेकिन हमें संरक्षण देगी, ये भाव होता है मां के साथ। या फिर लवर इन इज बिलवेड, जहां सब कुछ साझा किया जाता है, लवर विद द बिलवेड, ये बहुत कठिन है लवर एंड बिलवेड वाला। हालांकि भगवान के साथ सर्वोच्च संबंध यही होता है। अब श्री अरविंद कहते हैं पॉपुलर रिलीजन्स में कैसे प्रारंभ हुआ था, फियर ऑफ द गॉड्स एरोज फ्रॉम मैंस इग्नोरेंस ऑफ गॉड एंड हिज इग्नोरेंस ऑफ द लॉज दैट गवर्न द वर्ल्ड। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग इस कंटेक्स्ट को देख नहीं पाते हैं। सेमिटिक रिलीजन में गॉड्स थे बिफोर इस्लाम और ये आया क्रिश्चियनिटी आई, तो वो गॉड्स जो थे उन्होंने उनको वाइप आउट कर दिया, उसकी जगह कहा नहीं एक सुप्रीम। क्या भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ? भारतवर्ष में भी हुआ लेकिन बहुत पहले हो गया, हम लोगों ने उन दोनों को ज्वाइन करना भी सीख लिया। वेदों में यू मोस्टली गो थ्रू द गॉड्स, वेदांत क्या कहता है? वो तो यही कहता है कि एकमेव द्वितीयम, इट टेक्स यू टू द सुप्रीम। लेकिन हमने क्या किया, दोनों का समन्वय, क्योंकि हम बहुत पहले से, वो कहते हैं ना कि अभी तुम बच्चे हो खेल खेल रहे हो। सेमिटिक रिलीजन्स में बहुत बाद में उदय हुआ, और भारतवर्ष में क्योंकि इतना लंबा एक्सपेरिमेंट चला है, गॉड्स के थ्रू हम लोग भी गए हैं। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो हर जगह थ्रू द गॉड्स, जिगजैग ऑफ द गॉड्स, ये देवता वो देवता सबसे, हालांकि वो इनर प्रोसेस है, लेकिन आप वन देवता टू अनदर, तब आप अंत में जाते हो सुप्रीम के पास। उपनिषद क्या कहते हैं? तो सीधा कहते थे कि भाई ब्रह्म, और फिर अवतार का वो आया जिसमें भक्ति आ गई। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और अगर आप इवॉल्व नहीं करोगे तो वो समाप्त हो जाए। यही हम लोगों ने देखा ब्रॉन्ज एज के एंड में ट्रॉय का जो हुआ, क्या हुआ वो गॉड्स वगैरह सब कहाँ गए ट्रॉय के? आज अगर आप अभी जाएंगे ग्रीस में तो उनकी कहीं कहीं स्टैचू है, लेकिन वो एक रेलिक ऑफ द पास्ट। तो वो एक समय ये आवश्यक था भय, फिर भगवान जब नज़दीक आते हैं, क्योंकि आप उनसे चिर परिचित हो जाते हैं, लोग जो आश्रम आते हैं उन्होंने ये अनुभव किया होगा, शुरू में जब आते हैं तो आप हर जगह आपको भय लगता है, वो जो गेट पर खड़ा है उससे भी भय लगता है, आप फटाफट देखते हो कहीं कुछ मेरा गड़बड़ तो नहीं है, अंदर समाधि के पास भी आप थोड़ा डिस्टेंस रह के करते हो, है ना, होता है ना फिर, लेकिन धीरे धीरे आप भगवान के अभ्यस्त हो जाते हो। और अगर पुराने जन्म का संबंध है तो आप प्रारंभ से कहते हो भैया हमको भय नहीं, हम तो प्यार करते हैं। तो ये प्रोसेस है इवोल्यूशन की है। ए नियरर अप्रोच टू द बिगिनिंग ऑफ द वे ऑफ डिवोशन बिकम्स पॉसिबल व्हेन दिस एलिमेंट ऑफ डिवाइन पावर जो डिसएंगेजेस इटसेल्फ फ्रॉम दीज क्रूडिटीज। अब ये सबको शेरविन क्रूड कह रहे हैं, ये सारा जो इस्लामिक में वो सूफिज्म की बात नहीं कर रहे हैं जहां प्रेम आया, पर जो ट्रेडिशनल वो मुल्ला वाला इस्लाम और जो प्रीस्ट वाला क्रिश्चियनिटी और जो ज्यूश ट्रेडिशन, ये एक क्रूड, जब मनुष्य क्रूड होता है तो क्रूड ढंग से जुड़ता है। एंड फिक्सेस ऑन द आइडिया ऑफ अ डिवाइन रूलर क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड मास्टर ऑफ द लॉ हु गवर्न्स द अर्थ एंड हेवेंस एंड इज द गाइड एंड हेल्पर एंड सेवियर ऑफ हिज क्रिएचर्स। अब ये नेक्स्ट लेवल पर जब आता है तो वहां पर कर्म की लॉ, क्योंकि जज करेंगे ना, किस बेसिस पर जज करेंगे, कर्म के आधार पर जज करेंगे, उसका भी तोड़ भारतवर्ष ने बहुत सुंदर दिया है। फिर वो कहते हैं कि बट इवन अपार्ट फ्रॉम दीज एक्स्ट्रावेगेंसेस ऑफ ए चाइल्डिश रिलीजियस बिलीफ, क्या इटर्नल डैमनेशन, तुम अगर नाम नहीं बदला, तुमने क्राइस्ट को नहीं अपनाया तो तुम सदा सदा नरक में चले जाओगे। शेरविंद इसको कहते हैं चाइल्डिश, क्या बचपना है, कोई ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? मतलब तुम लॉजिकली ये कह रहे हो कि एक स्थान ऐसा है जहां भगवान नहीं है तो कैसे बना? तो रूलर तो हुए नहीं। अगर कोई रूलर बोले मेरा राज्य यहां तक है, कि बड़ी सुंदर एक हिंदी कहानी है जिसमें राजा सबको पूछता था कि कोई ऐसी बात प्रश्न करूंगा गलत उत्तर रहेगा तो तुम्हारा सिर कट जाएगा, सही उत्तर दोगे तो बच जाओगे, नहीं जानते तो मत बोलो, इतना उसमें था। तो सब डरते थे, एक बार पंडित से पूछा उन्होंने, हाँ कहो पंडित ये बताओ कोई ऐसा काम बताओ जो भगवान भी नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ। बहुत अहंकारी राजा था, ये तो घबरा गया कि क्या बोलूँ, ओमनीपोटेंट हो तो सब कर सकते हैं। तो बहुत परेशान, बेटे ने कहा, मैं बच्चा था, कहा मैं उत्तर दे दूंगा पापा, डोंट टेक टेंशन। तू कहाँ से देगा, मोबाइल में खोजेगा? कहते नहीं नहीं नहीं, इसका तो बहुत सिंपल उत्तर है, तो जाके बोलता है राजा को कि एक काम है जो आप नहीं कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकते हैं। कहता अच्छा बताओ, तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो, क्या है ऐसा काम? कहते बहुत सिंपल है, आप क्रोधित हुए तो अपने राज्य से हमको बाहर निकाल सकते हैं। आगे वो कुछ बोले, समझ गया, कहते भगवान तो निकाल ही नहीं सकते हैं, कहां है जहां उनका राज्य नहीं हो? कहते हाँ, लॉजिकली तो करेक्ट है। अब वो कहते ना दोनों तरफ से फंस गया, फैक्ट इज कि उनका राज्य सब जगह नहीं है तो राज्य से निकाल सकते हैं, पर भगवान तो अपने राज्य से निकाल नहीं सकते हैं। वो आपको एक कोई स्थान से निकाल सकते हैं, चर्च से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, पर सब जगह वो हैं। तो यहां पर अब नेक्स्ट लेवल पे शेरविंद वहीं ले जाते हैं। द आइडिया ऑफ ए ऑलमाइटी जज, लेजिस्लेटर, किंग इज ए क्रूड एंड इम्परफेक्ट आइडिया ऑफ द डिवाइन। इट अटैचेस द परस्यूट ऑफ वर्च्यू एंड द शनिंग ऑफ सिन टू द आइडिया ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। अब देखिए इसमें फ्लॉ क्या है, फ्लॉ ये है सबसे बड़ा कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये तो प्रारंभ ही गलत है। यहां तो प्रेम कहां से है? कोई भी व्यक्ति कि भाई मैं ये कर रहा हूं, इसीलिए कई बार है ना, कई आफ्टर मैरिज मेनी ईयर्स लेटर कभी कभी वाइफ अगर बोले नहीं ये मेरी ड्यूटी है तो शी टेक्स ऑफेंस। ड्यूटी है, बस ड्यूटी रह गई है, मतलब आप कर रहे हो आउट ऑफ गुडविल या गुडनेस, प्रेम चला गया है। तो उसी तरह से भगवान के साथ कि भाई ये हमको क्यों करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, भगवान पनिशमेंट देंगे, या भगवान की हम करेंगे इतने हजार बार पूजा करेंगे, ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये मंत्र करेंगे तो भगवान हमको पुरस्कार देंगे। तो शेरविंद इसको कहते हैं इट्स ए क्रूड नोशन, मना नहीं करते हैं, जैसी तुम्हारी जाकी रही भावना, जैसी जिस स्टेज पर तुम खड़े हो, किंडरगार्टन में खड़े हो तो ठीक है, लेकिन ये समझना कि किंडरगार्टन इज द एंड ऑफ गॉडवर्ड एक्सपीरियंस तो वो गलत है। इट मेक्स हेल एंड हेवन एंड नॉट द डिवाइन हिमसेल्फ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोल इन इट्स रिलीजियस लिविंग। ये मुल्ला लोग कई बार, हमारे यहाँ भी कई बार लोग इस तरह स्वर्ग नरक, आप तो बहुत कम करते हैं, मैंने सुना नहीं कोई हमारे यहाँ कोई, पर मुल्ला लोग तो अभी भी कहते हैं वहाँ जाओगे तो हूरे मिलेंगी, स्वर्ग में जाओगे, फिर कह देते हैं ऐसे नहीं जाओगे, जब कयामत आएगी तब जाओगे, मतलब पहले तो आप वेट करोगे कि भाई दुनिया नष्ट हो, उसके बाद भी क्या मिलेगा आपको, अंत में हूरे ही मिलेंगी, ये कोई इज इट वर्थ इट, इट इज सो सिली। पर वही है कि लोग विश्वास करते हैं, तो विश्वास का तो फिर क्या कहा जाए। दीज क्रूडिटीज, शेरविंद इसको क्रूड कहते हैं, दीज क्रूडिटीज हैव सर्व्ड देयर टर्न इन द स्लो एजुकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, बट दे आर ऑफ नो यूटिलिटी टू द योगिन हु नोज दैट वट एवर ट्रूथ दे मे रिप्रेजेंट बिलोंग्स रादर टू द एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन सोल विद द एक्सटर्नल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। कहते ये क्रूडिटी है, इसका अपना एक स्थान था लेकिन मनुष्य अब आगे जा रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये जो रिलीजन से कैसे खत्म होंगे, मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, इवॉल्व करते जाओ ये ड्रॉप हो जाएगा। कहते प्रमाण, प्रमाण वही अभी आए, ये फिल्म आई है ना ओडिसियस, क्या है प्रमाण? एक समय यही रिलीजन था कि भाई गॉड्स ये वो कहां चले गए, हमारे यहां भी आप देखिए कैसे मॉडिफाई हो गया सारा कंसेप्शन। अब वो बच्चे हैं, कुछ समय बाद आज नहीं तो कल होगा चेंज, वो समझेंगे कि हम कैसे सीमित विचारधारा में रह रहे थे, और वो अपने आप चेंज इवोल्यूशन की प्रोसेस में आता है, अगर आप नहीं जाओगे उसमें तो यू विल फिनिश, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। तो उसमें अब आता है एथिकल बीइंग इत्यादि का, और एथिकल बीइंग की नहीं, अब एथिकल बीइंग क्या है, एथिकल बीइंग है कि मैं वो करना चाहता हूं जो उचित है और सही है, वो रिवार्ड पनिशमेंट के लिए नहीं, मॉरल रिवार्ड पनिशमेंट, एथिकल बीइंग जो आपको अंदर से लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, ये सही है, ये उचित है, तो वो आपको कर्मयोग के द्वार पे ले जाता है। अब नेक्स्ट उसमें आएंगे मूवमेंट।
कहते हैं पहले धीरे धीरे भय छूटता जाता है. मोर ओवर द एथिकल एम इन योगा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एक्सटर्नल आइडिया ऑफ वर्चू. एथिक्स और मॉरेलिटी में ये डिफरेंस है. मॉरेलिटी किसी बाहरी कारण के कारण की जाती है, एथिक्स आपके अंदर की चीज है. आपको अंदर से महसूस होता है कि ये नहीं करना चाहिए, आपका अपना उसके बारे में जस्टिफिकेशन होगा जो भी होगा. मॉरेलिटी जब आप एक शिक्षण हमको मना किया गया है इसलिए हमें नहीं करना चाहिए, किताब में लिखा है, ये डिफरेंस है. ऑर्डिनरली एथिक्स इज रिगार्डेड, योगा इज, हाँ, ऑर्डिनरली एथिक्स इज रिगार्डेड एज ए सॉर्ट ऑफ मशीनरी ऑफ राइट एक्शन. मशीनरी ऑफ राइट एक्शन, ये ऑर्डिनरली द एक्ट इज एवरीथिंग एंड हाउ टू डू द राइट एक्ट इज द होल क्वेश्चन एंड द होल ट्रबल. ये जहां आपने बाहर का कर दिया तो वो एथिक्स खत्म हो गई उसके अंदर. वो एक बाहरी चीज है कि भाई मुझे ऐसे ही करना है. देखिए कई बार मैं तो एक बार देखा है एक बच्चा समाधि के पास जाके वो अब खुश हो रहा है, देख रहा है वो खुशी खुशी इधर उसके पापा ने सिर पकड़ा इतनी बर्बरता से उसको हटाक तो तुझे प्रणाम करना है. वो क्या उसके अंदर भाव हुआ आई डोंट नो. पर एक कहानी बताता हूँ माता जी के साथ, मम्मी पापा उनके वो सारी फैमिली अभी भी है तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, दोनों पेरेंट्स आश्रम में हैं. तो बता रहे थे कि वो अपने 4 साल के बच्चे को लेके माता जी के रूम में गई. तो 4 साल का बच्चा है, वो घूम रहा है इधर उधर, ये है वो देख रहा है. अब ये बार बार मत कर, ये मत कर, वो माँ ने उसको बुलाया अपने पास, कहती हैं व्हाई डोंट यू जस्ट फॉरगेट और लेके उनका सिर अपने लैप में रख दिया. ये अनुभव उन्होंने स्वयं बताया, कहते मैं तो बिल्कुल भूल गई. नहीं कहा अब ये मेरी चिंता नहीं है, ये माँ की चिंता. कहती तुम क्यों ये चिंता कर रही हो, यहां के भी चिंता कर रही होगी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको छुए उसको नहीं छुए. मैं हूं ना, ये कहानी मैं हूं ना, बट इज अंडरस्टूड. अब देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, यही डिफरेंस है. अब उन्होंने अपने आप को दे दिया, कहते मैं तो भूल गई सिर गोद में रख के. फिर जब उठी तब फिर वो अपना चुपचाप जो भी था. तो ये हमारी डूज एंड डोंट्स के जो नियम है, और एक है जो हमारे अंदर से नेचुरल है. आप अगर जिनको प्रेम करते हो तो आप उनके कक्ष में जाके थोड़ी कोई बातें करो जिनके लिए आए हो, ये एथिक्स है. जब आप इसलिए करते हो कि ये मना है तो ये मॉरेलिटी है, या आपका भाव चेंज हो गया, मोटिव अलग है. बट टू द योगिन एक्शन इज चीफली इंपॉर्टेंट नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट रादर एज ए मीन्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोल गॉडवर्ड. मोटिव से ये कर्मयोग होता है, एक्शन से नहीं होता है. और शेरविंद बार बार बताते हैं कि भारतीय मानसिकता में और वेस्टर्न मानसिकता में ये मूल अंतर है रिलीजियस टीचिंग की. वेस्ट में एक्शन, बाहरी एक्शन इंपॉर्टेंट है. तो फिर क्या सीखता है व्यक्ति, हिपोक्रेसी. हम पहले तो राष्ट्र को नष्ट कर देंगे दूसरे, फिर हम उसको एड दे देंगे. बाहर से आप कर रहे हो चीजों को, लेकिन भारत ने क्या बताया, मोटिव. आपके अंदर मोटिव, मोटिव क्या है, आप क्यों कर रहे हो जो भी कर रहे हो. आपने भगवान को फूल चढ़ाए, आपने भगवान को चढ़ावा दिया, जो भी दिया, मोटिव क्या है. ज्यादातर लोग तो ऐसे चढ़ाते कि हम भगवान जी 500 रुपये डाल दें, 5000 कर देना. और कुछ कहते हैं हे मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं मैं डाल देता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले लो सारा. यही अंतर है कि जहां पे कैलकुलेशन हो इसका. देयरफोर व्हाट इंडियन स्पिरिचुअल राइटिंग्स ले स्ट्रेस अपॉन इज नॉट सो मच द क्वालिटी ऑफ द एक्शन टू बी डन एज द क्वालिटी ऑफ द सोल फ्रॉम विच द एक्शन फ्लोस. बाहर से आपने क्या काम किया, लेकिन अंदर आपकी क्या स्टेट थी, क्या मोटिव थी. क्या जब हम डाइनिंग रूम या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो हम किस भाव से कर रहे हैं. क्या सच में हम ये कि ये भगवान की जगह है, ये काम मुझे भगवान ने दिया इसको मैं अच्छे से करूं, या शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए. मना ही नहीं, आप करो जो करो, आप जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे ये आपकी समस्या है, पर इट हैज टू बी डन विद दैट एटीट्यूड.
फ्रॉम विच द एक्शन फ्लोज अपॉन इट्स ट्रूथ स्वधर्म फियरलेसनेस. अब देखिए चेंज हो गया पूरा. अब एक्शन का बेसिस क्या है? फियरलेसनेस, प्योरिटी, लव, कंपैशन, बेनेवोलेंस, एब्सेंस ऑफ द विल टू हर्ट एंड अपॉन द एक्शंस एज देयर आउटफ्लोइंग्स. ये अंदर का भाव है, बाहर का काम कुछ भी हो रहा है. देखिए शिव जी, श्री कृष्ण जब वो वध भी करते हैं तो उसको उद्धार कहा जाता है. शिशुपाल का वध किया, क्यों भैया? आप तू ऑलरेडी और करेगा तो एकदम ही चल मैं तुझे लिबरेट कर देता हूं. तो इट इज ए ग्रेस, इट इज एन उद्धार, इट इज नॉट कॉल्ड एज वध. तो वो भाव से जब हम करते हैं कि किसी को उद्धार करना, हम नहीं उद्धार कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे अंदर भाव सही है कि भाई करुणा से, बेनेवोलेंस से कर रहे हैं, बाहर से वो एक्शन हो सकता है देखने में अजीब लगे. इसीलिए जितने भी ऋषियों का श्राप होता था, श्राप नहीं होता था, पीछे एक वरदान छिपा होता था. पर सुनने वाले को, इसलिए कई बार मैं कहता हूं प्लीज डोंट यूज द वर्ड कर्स फॉर श्राप. श्राप का कोई इक्विवेलेंट नहीं है. सारे श्राप अंत में बहुत ही अच्छा करते थे. कर्स तो फिर वो एक जो इलविल वाला व्यक्ति वो करता है. ये है ही नहीं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही कंसेप्ट नहीं है श्राप का. तो उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है बड़ा गुस्सा हो गया दुर्वासा ऋषि. पर वो श्राप देखिए, सारे देखिए कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं. वो माता अंजना, जस्ट इमेजिन, सी इज ए अप्सरा, श्रापित होकर के वो धरती पर आ जाती है. दुर्वासा ऋषि बोलते हैं. अब बताइए, वहां वन ऑफ द अप्सराज, यहां अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, वॉट इज मच ग्रेटर. तो दैट्स हाउ, इसके पीछे भाव क्या है. इसीलिए जब जीवन में कुछ भी हो, इसको भगवान का ग्रेस समझ के लेना चाहिए. माँ ने कहा है तो ग्रेस ही हो जाती है. अगर आप ये कि माँ ने मुझे दंड दिया, माँ मुझसे क्रोधित हैं, अरे भाई वो क्रोधित होंगे तो तुम कहाँ रहोगे? एक ही चीज भगवान को नहीं आती है, कहा ना कौन सी चीज भगवान नहीं कर सकते? क्रोधित. वो तो विनाश भी करते हैं तो नाचते नाचते करते हैं शिव जी तांडव. इट्स अ डांस, ही इज एंजॉयिंग द डिलाइट. अवर नेचर कंटेन्स एज वेल एज इट्स पैशनेट राजसिक एंड इट्स डाउनवर्ड टेंडिंग तामसिक क्वालिटी ए प्योरर सात्विक एलिमेंट एंड इट इज द एनकरेजमेंट ऑफ दिस इट्स हाइएस्ट पार्ट विच इज द बिजनेस ऑफ एथिक्स. बाई इट वी इंक्रीज द डिवाइन नेचर, दैवी प्रकृति. सो एथिकल पॉइंट का मतलब है सात्विक भाव से करना. वही कर्म राजसिक भाव से किया गया या तामसिक भाव से किया गया हमको नीचे की ओर ले जाता है. फिर आगे वो कहते हैं कि फियर मास्टर और सर्वेंट के रिलेशन में भी आ जाता है. स्वामी हैं हम, सेवक हैं द डिवाइन. लेकिन कहते हैं अंतर है. अंतर क्या है? अंतर है कि द डिवाइन इवन एज द मास्टर डज नॉट पनिश एनीबॉडी. माँ एक बड़ा टचिंग इंसिडेंस बताती हैं. एक दारा थे, दारा की बहन, चिन्मयी नाम दिया था दारा को तो नाम दारा दिया था, शेख इब्राहिम थे वो, बिकॉज ही वॉज दारा इन प्रीवियस लाइफ. चिन्मयी नाम दिया था, शी वॉज ए मुस्लिम, नाम भूल रहा हूँ उसका, सम वट एवर मुस्लिम नेम. तो उसको मन में बहुत बार होस्टाइल फोर्सेस का बहुत अटैक होता था. मन में आता था कि माँ को मैं धक्का दे करके गिरा दूँ, ऐसे उसके अंदर आते थे. माँ ने उसको अपने पास में रखा हुआ है. लोग कहते थे पास क्यों रखा है आपने इसको? माँ कहती कहाँ जाएगी बेचारी, बाहर जाएगी तो और ना जाने क्या करेगी. तो भगवान के पास रहना कोई जरूरी नहीं कि क्वालिफिकेशन हो. खैर एक बार केवल माँ उसके अंदर जो भूत आता था उसको भगाने के लिए एक हल्का सा थप्पड़ लगाती हैं. माँ इसको काउंट करते, एजेंडा में मेंशन्ड है, वो टू थ्रो अवे जो अंदर में उसके फोर्स आती थी. माँ ने एक पहले भी एक इंसिडेंस बताया है. तब शेरविंद के पास जब वो जाती हैं तो कहती हैं एक ही बार, शेरविंद ऐसे कहते हैं यू नीड नॉट हैव डन इट. फिर माँ बताती हैं क्योंकि शेरविंद केवल और केवल वननेस के आधार पर कार्य करते थे. वननेस होगा बाहर से कुछ भी, बट डिवाइन इज इन हर, डिवाइन इज इन एवरीवन. देखिए कहाँ ले जाते हैं, अच्छा बुरा
ये डेवलप्ड, ये अनडेवलप्ड, अरे भाई सबके अंदर डिवाइन है। उस आधार पे अब तुम लड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन ये मत भूलो जो फंडामेंटल लेसन है, नॉट देयर फॉर द हेब्रिक, मतलब वो जूश राइटियसनेस ऑफ द गॉड फियरिंग मैन, बट द प्योरिटी, लव, बेनिफिशेंस, ट्रूथ, फियरलेसनेस, हार्मलेसनेस ऑफ द सेंट एंड द गॉड लवर आर द गोल ऑफ द एथिकल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दिस नोशन। आप किसी को क्यों हानि पहुंचाओगे, किसी का बुरा कैसे चाहोगे, किसी के विषय में आपके मन में दुर्विचार कैसे आएंगे? आप डांट सकते हो लेकिन ये दुर्विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है। आप उसके और भगवान के काम में रूढ़ा लगा रहे हो। किसी को क्रिटिसाइज करना, वो बड़ा बुरा आदमी है, माँ कहती है, दिस कम्स एज ए ब्लो टू मी, और आप उसके काम में, क्योंकि आप किसी को कह रहे हो आप बहुत बेकार हो, तो उसके अंदर क्या हुआ, मनोदशा अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गई। जब वो नीचे आ गई तो अब क्या हुआ, भगवान तो उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, उनको तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन एक ही है, पर अब उनको आपके काम को भी अंडू करना पड़ेगा। तो ये कौन सी एथिक्स है, यहां पर उसकी बात है। तो मास्टर डज नॉट पनिश एनीबडी, लव इज द की ऑफ दिस रिलेशन एंड दिस सर्विस। दास्यम इज इन इंडियन योगा द हैप्पी सर्विस ऑफ द डिवाइन फ्रेंड और द पैशनेट सर्विस टू द डिवाइन बिलवेड। जिस दिन काउंट करना शुरू किया कितने घंटे मैंने काम किया, देखो मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसा है, देखो वो वैसा है, तो भैया ये योग नहीं है और कुछ है, दिहाड़ी की मजदूरी है। हम यहाँ किसी डिपार्टमेंटल हेड की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा में ये सब नहीं होता है। और कठिन होता है, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं ट्रेडिशनल योग, बैठे मेडिटेशन किया, ध्यान किया। कर्मयोग बड़ा कठिन होता है। किसी ने लिखा बड़े उत्साह से गया, उसको एक्सपीरियंस भी हुआ कि वो माँ ही बुला रही हैं दिल्ली में, अभी अभी गया वो जून के महीने में, उसको खेत में काम दे दिया। कहता है इसकी तो मुझे आदत नहीं है इस गर्मी में। देख लो भाई, भगवान से जुड़ना है तो आदत डाल लो, नहीं जुड़ना है या पार्टली जुड़ना है तो अलग बात है, आपकी मर्जी। कह दो कि नहीं होता, लेकिन जुड़ना है तो जहां पे जिस विध राखे माँ, ये प्रोसेस है योग की। आगे फिर कहते हैं फादरहुड, ये सब भी एक लिमिटेड रिलेशन है। द रिलेशन ऑफ द डिवाइन फादरहुड एंड द क्लोजर रिलेशन विद द डिवाइन एज द मदर सोल ऑफ द यूनिवर्स हैव देयर स्प्रिंग्स इन अनदर अर्ली रिलीजियस मोटिव। तो पहले रिलीजियस मोटिव बताते हैं कि भाई सब कुछ हमें भगवान से मिलता है, जैसे फादर देते हैं और हम भी लाके सब कुछ भगवान के चरणों में रख देते हैं, ये रिलेशन एक है। फिर वहां से वो ले जाते हैं हमको प्रेयर के ऊपर। प्रेयर के ऊपर दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। द एफिकेसी ऑफ प्रेयर इज ऑफन डाउटेड एंड प्रेयर इटसेल्फ सपोज टू बी ए थिंग इरेशनल एंड नेसेसरली सुपरफ्लुअस एंड इनएफेक्टिव। लॉजिक क्या है कि जो निर्णय भगवान ने तो डिसाइड कर ही दिया है, तो प्रेयर से क्या फर्क पड़ता है। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रे करने का क्या फायदा, जब होना तो उन्हीं की मर्जी है तो हम प्रे क्यों करें। अरे हम प्रे करेंगे तो संबंध जुड़ेगा, करेंगे अपनी मर्जी तो भी, लेकिन शेरविंद कहते हैं कि एक्चुअल यूनिवर्सल वर्किंग में ये ऐसे मैकेनिकल नहीं है, देर इज अ रिलेशन, तो वो संबंध आप जोड़ सकते हो, वो करेंगे या नहीं करेंगे ये उन पर छोड़ दो, लेकिन आपको कहने से कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि आप कहोगे अपनी प्रार्थना तो पहले तो जुड़ोगे। दूसरा, कई बार ये भी पूछा कि फिर भगवान क्यों कई बार वो कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं प्रेयर जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, आपके विल के अनुसार वो नहीं होनी थी फिर भी क्यों हो जाती है। कहते हैं ताकि तुम जान लो अनुभव से कि यह रास्ता सही नहीं है, भगवान का खेल है, ही अलाउज अस, हम प्रे करते हैं और फुलफिल कर देते हैं कई बार, तो हमको लगता है भगवान ने फुलफिल किया तो ये भगवान की मर्जी होगी, नॉट नेसेसरली, लेकिन फिर भी वो फुलफिल करते हैं कि ठीक है बच्चे खेल के तू जान ले, लेकिन खड़े होते हैं जो योगनिष्ठ है उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
जिस दिन आपका हड्डी टूटेगी कहेंगे हाँ हुआ खेल लिया, हाँ प्रभु दिल में बहुत दर्द है आ जा मैं तेरा हार्ट मसाज करता हूं, ये भी करेंगे, यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। तो फिर वो यही बताते हैं कि एक विचार ऐसा है कि भगवान जो करेंगे उसके लिए स्टिमुलेशन बाय ह्यूमन थॉट ये आवश्यक नहीं है, बट नीदर इज देयर ऑर्डर और द एक्सिक्यूशन ऑफ द यूनिवर्सल विल ऑल टुगेदर अफेक्टेड बाय मैकेनिकल लॉ, यही तो उसकी ब्यूटी है, बट बाय पावर्स एंड फोर्सेज ऑफ विच फॉर ह्यूमन लाइफ एटलीस्ट ह्यूमन विल एस्पिरेशन और फेथ आर नॉट अमंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेयर इज ओनली ए पार्टिकुलर फॉर्म गिवेन टू दैट विल एस्पिरेशन एंड फेथ। कहते हैं ये बनाई यूनिवर्स इसलिए, इसका मूल एंड रिजल्ट इज ज्वाइनिंग विद द डिवाइन, ये नहीं कि केवल एक सिस्टम बना दिया भगवान ने, वो बंधे नहीं है किसी सिस्टम से, पढ़ा है ना हम लोगों ने, सुना है वो भजन, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान न टलते देखा, ये भी फैक्ट है। देखिए आप सारे जो अपने एक से एक एग्जाम्पल हुए महाभारत में तो भरे हुए हैं, और लोग कहते हैं भगवान को तो इम्पार्शल होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, भगवान की जो मर्जी होंगे तुम बिलीव करते हो कि इम्पार्शल, तो इम्पार्शल है, अर्जुन तो नहीं बिलीव करता था, वो तो शरणागति हो गया था, उसने कहा जो आपको उचित लगे वो करिए, तो उनको जो उचित लगा उन्होंने किया। तो इट इज द रिलेशन यू फॉर्म विद द डिवाइन, यही बाली सुग्रीव की कथा में भी आता है, बट यू हैव टू फॉर्म द रिलेशन। फिर वो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, इट्स फॉर्म्स प्रार्थनाओं के बारे में आर वेरी ऑफन क्रूड एंड नॉट ओनली चाइल्ड लाइक विच इज इन इटसेल्फ नो डिफेक्ट, बच्चे जैसी, बट चाइल्डिश, बट स्टिल इट हैज ए रियल पावर एंड सिग्निफिकेंस। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या है, चाइल्ड लाइक है कि भगवान मेरा ये कर दो मुझे ये दे दो, वो चाइल्ड लाइक है, चाइल्डिश क्या होती है, आप ऐसी कोई चीज मांग रहे हो जो मतलब कि मेरा एक मिनट में वो भवन खड़ा हो जाए, मुझे लॉटरी मेरी निकल जाए करोड़ों रुपए की, ये इस चाइल्ड इज टोटली चाइल्डिश, फूलिश जो भी कहो, बच्चा वो चीज मांग रहा है जो है नहीं, माने इवन आपके फॉर्मेट में नहीं है, पर चाइल्ड लाइक वो ऐसी चीज मांग रहा है जो मिल सकती है लेकिन वो तैयार नहीं है, कभी कभी भगवान दे देते हैं अगर उनको उचित लगे। प्रेयर हेल्प्स टू प्रिपेयर दिस रिलेशन फॉर अस, सबसे बड़ी बात होती है प्रार्थना, जब हम करते हैं तो एक संबंध जुड़ता है, एट फर्स्ट ऑन द लोअर प्लेन इवन वाइल इट इज देयर कंसिस्टेंट विद मच दैट इज मियर इगोइज्म एंड सेल्फ डिल्यूजन, बट afterwards we can draw toward the spiritual truth which is behind it. तो मुख्य चीज क्या होती है, एक संबंध जुड़ता है, necessarily in the end prayer either ceases in the greater thing for which it prepared us. In fact the form we call prayer is not itself essential so long as the faith, the will, the aspiration is there. तो अब वो कहानी एक व्यक्ति की जो रोज जाके कृष्ण जी के मंदिर में रोज प्रार्थना उत्थना करके जो मांगना उंगना वो सब कुछ करता था, फिर उसको चोट लग गई, हॉस्पिटल में 3 महीने एडमिट हो गया, तो अब जब एडमिट था लोगों ने देखा कि ये आता था रोज इस टाइम पर, ये कहाँ चला गया, पता किया, देखा हॉस्पिटल में, गए हॉस्पिटल मिलने कुछ लोग, तो कहते ऐसा चल रहा है, टांग लटकी हुई है प्लास्टर के अंदर, कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, कहते अच्छा चल रहा है, तुमसे तो सुना है कोई मिलने मिलने नहीं आता, कहते अरे रोज आते हैं कृष्ण जी मिलने, कृष्ण जी मिलने आते हैं, हाँ वो यही पूछने आते हैं, बस एक शब्द कहते हैं ठीक हो ना, मैं जाता था रोज, अब उनकी बारी है पूरा सूत के साथ वापस कर रहे हैं, मिलने आते हैं, ठीक हो ना, हाँ ठीक हूं। तो ये एक संबंध जोड़ता है इसके, द रिलेशंस विच अराइज आउट ऑफ दिस एटीट्यूड टुवर्ड द डिवाइन आर दैट ऑफ द डिवाइन फादर एंड मदर with the child and that of the divine friend. To the divine, as these things, the human soul comes for help, for protection, for guidance, for fruition, or if knowledge be the aim, to the guide, teacher, giver of light, for the divine is the son of knowledge, or it comes in pain and suffering for release, relief and solace and deliverance. It may be deliverance either from the suffering itself or from the world existence. हर चीज के लिए, तो तुम्हारा क्या संबंध है उसके हिसाब से, अगर गुरु के रूप में जाओगे तो गुरु तो भाई शिक्षा देंगे, गुरु तो ये कहेंगे देखो तुमने गलती की थी अब ये ठीक करो, बाकी कर्मों का हिसाब किताब है। माँ के पास जाओगे तो पहले अगर तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब है ना, वो तुमको सूद करेंगी, उसके बाद तुमको जो जो चाहिए साथ में शिक्षा भी देंगी और ठीक भी कर देंगी। ये डिफरेंस है। इसीलिए इस योग में माँ का संबंध है। ये प्रश्न बहुत बार लोग पूछते हैं, गुरु कहाँ है भैया? गुरु के ऊपर की चीज है ये। गुरु इज वन ऑफ द रिलेशंस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी लाइक ए मदर, दैट्स वाई लोगों ने उसको अपनाया नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु क्या है भैया? 6 घंटे आपकी क्लास के बाद होमवर्क दे के गुरु की छुट्टी हो गई कि तुम वहां मेडिटेशन करना है, तुम्हारा होमवर्क है। माँ कह सकती है ऐसे मेरी छुट्टी हो गई, वो बच्चा वहां स्कूल में तो भी माँ का दिल जुड़ा हुआ है। ये डिफरेंस है। इन दीज थिंग्स वी फाइंड देर इज अ सर्टेन ग्रेडेशन। द रिलेशन ऑफ फादरहुड इज ऑलवेज लेस क्लोज, इंटेंस, पैशनेट, इंटीमेट, एंड देयर फोर इट इज लेस रिसोर्टेड टू इन द योगा विच सीक्स फॉर द क्लोजर यूनियन। दैट ऑफ द डिवाइन फ्रेंड इज ए थिंग स्वीटर एंड मोर इंटीमेट, admits of an equality and intimacy even in inequality and the beginning of mutual self-giving. यही अर्जुन कहता है ना, अरे आपने बताया नहीं कि आप भगवान हो, मैं तो आपके गले में हाथ डाल करके घूमता था। गीता में है, I am so sorry, वो कहते don't be sorry, सब ठीक है, यही relation था मेरे साथ। But closer and more intimate still is the relation of the mother and the child. And that therefore plays a very large part wherever the religious impulse is most richly fervent. अब आगे जो कह रहे हैं इसको हृदय के अंदर अंकित करके, ये पेज नंबर 568 पर ये मिलेगा, इसको लिख करके अपने कबर्ड पे लगा लीजिए और दिल में रख लीजिए। मैंने इसको बहुत दिनों तक इस चीज को रख के अंकित हो गई अंदर। क्या है? The soul goes to the mother's soul in all its desires and troubles, and the divine mother wishes that it should be so. अच्छा लगता है उनको। अब बोलेंगे कि नहीं नहीं हम माँ को क्यों कष्ट दें? एक बार यहाँ पे कहने प्रणबदा ने वो बताया नहीं कि हम लोग नहाने जा रहे हैं क्योंकि माँ फिर सुरक्षा ये सब देंगी, तो क्या जरूरत है हर चीज में माँ को ट्रबल करने की? तो उस दिन माँ ने अपनी डायरी में लिखा, इट सीम्स दैट माई चिल्ड्रेन डो नॉट नीड मी एनी मोर। उनके हाथ की डायरी पड़ी, इतना दुखी हुए, कहते हैं अरे माँ को अच्छा लगता है सब कुछ बताना। एंड द डिवाइन मदर विशेज दैट इट शुड बी सो, सो दैट शी मे पोर आउट हर हार्ट ऑफ लव। माँ का संबंध जोड़ा है, उनको प्रेम देने दो। माँ के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है जब बच्चे उनके प्रेम को रिफ्यूज करते हैं। हम बड़े हो गए हैं, अरे बड़े हो गए होगे, खाना मुझे बनाने दो। सो दैट शी मे पोर आउट हर हार्ट ऑफ लव, इट टर्न्स टू हर टू बिकॉज ऑफ द सेल्फ एग्जिस्टेंट नेचर ऑफ दिस लव एंड बिकॉज दैट पॉइंट्स अस टू द होम टूवर्ड्स विच वी टर्न फ्रॉम आवर वांडरिंग्स इन द वर्ल्ड। क्या लाइन है! माँ घर से जुड़ा हुआ है सब कुछ जन्म से लेके, तो वो पॉइंट करती है हमारे घर की ओर। पिता जहाँ है फोन कर दिया, डैड पैसा चाहिए भेज दिया। माँ, सबने की एक अनुभव किया हुआ, मैं तो किया है FMC में, माँ को जब भी करो बेटा कब आ रहा है, माँ कब आ रहा है, आने के पहले तैयारी हो रही है, घर में क्या बनेगा, फेवरेट चीजें सारी हो रही है। ये माँ होती है। अब यहां स्पिरिचुअल होम की बात हो रही है। होम टुवर्ड्स विच वी टर्न फ्रॉम आवर वांडरिंग्स इन द वर्ल्ड एंड टू द बोजम ऑफ विच वी फाइंड अवर रेस्ट। कितना भी थक गया हो, यही एक चीज थी जो दीवार में बड़ी अच्छी थी। हालांकि वो फिल्म है, वो सारा वो भगवान में विश्वास नहीं करता है, पर अंत में क्या करता है, वो भगवान को नहीं मानता है, वो लेफ्टिस्ट मूवी है। लेकिन देखिए आप ब्यूटी, अंत में वो माँ की गोद में कहता है माँ, क्योंकि माँ को ही छोड़ के उसने सारी चीजें की थी, माँ तुम्हारी गोद में। ये अनकॉन्शियसली किया है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, माँ बस तुम्हारी गोद में मैं सोना चाहता हूँ। इट्स सो टचिंग।
अब लास्ट में दो लाइन पढ़ लेंगे हम लोग. बट द हाइएस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रिलेशन इज दैट विच स्टार्ट्स फ्रॉम नन ऑफ द ऑर्डिनरी रिलीजियस मोटिव्स बट इज रादर ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ योगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ लव इटसेल्फ. इट इज द पैशन ऑफ द लवर एंड द बिलवड. तुम बिन सुनी लागे रे दुनिया. Wherever there is the desire of the soul for its utter union with God, this form of the divine yearning makes its way even into religions which seem to do without it. Here the one thing asked for is love. The one thing feared is the loss of love. Loss of love is a veiling of the divine. The one sorrow is the sorrow of separation of love. For all other things either do not exist for the lover or come in only as incidents or as results and not as objects or conditions of love. और फिर वो लव को कहते हैं all love is indeed in its nature self-existent. जो मोल तोल हिसाब किताब से किया जाए वो प्रेम नहीं होता. The final demand of the bhakta is simply that his bhakti may never cease nor diminish. He does not ask for heaven or for liberation from birth or for any other object, but only that his love may be eternal and absolute. Kya adbhut baat hai. Ye Dhruv ne to manga tha na bhagwan se. Akhand bhakti, avichal bhakti. Maa se ek baar ek Krishna prem yogi ki baat hai. माँ से जब मिले तो माँ ने कहा बहुत प्रभावित खुश हुई थी माँ उनकी भक्ति से. यहाँ तक कहा कि काश इन लोगों में ऐसी भक्ति होती अपने आसपास जो थे. पर ये तो बुलाया उन्होंने हर तरह के लोगों को. तो माँ ने पूछा यू आस्क एनीथिंग. तो ही सेड नो मत क्योंकि वो पूरी तरह संतुष्ट हैं. फिर भी माँ ने कहा यू कैन आस्क एनीथिंग आई विल ग्रांट यू. तो कहती मे माई भक्ति ग्रो इन माई गुरु. माँ इतनी प्रसन्न हुई इसको सुन के. इस एग्जाम्पल को कोट करती हैं मेरे गुरु में मेरी भक्ति और बढ़े और बढ़े. ये होता है प्रेम जो रंग लाता है. अंत में कहते हैं लव इज ए पैशन एंड इट सीक्स फॉर टू थिंग्स इटर्निटी एंड इंटेंसिटी पासिंग बियॉन्ड डिजायर ऑफ पोजिशन विच मीन्स ए डिफरेंस. लव में पोजिशन माने देखिए लव ग्रो कर रहा है इसका लक्षण होगा कि आप कितने भी दूर रहोगे ये बना रहेगा क्योंकि आपको पजिस करना चाहना ही खत्म हो गया है. इट इज ए सीकिंग फॉर वननेस एंड इट इज हियर दैट द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ टू सोल्स मर्जिंग इन टू ईच अदर. अब यहां ह्यूमन लव में भी अल्टीमेट क्या है एंड बिकमिंग वन फाइंड द एक्मे ऑफ इट्स लॉन्गिंग एंड द अटरेंसेज ऑफ इट्स सेटिस्फैक्शन. Love too is a yearning for beauty and it is here that the yearning is eternally satisfied in the vision and the touch of the joy of the all beautiful. Love is a child and a seeker of delight and it is here that it finds the highest possible ecstasy both of the heart consciousness and of every fiber of the being. तो ये डिवाइन की तरफ और फिर ह्यूमन वो एक बार आप रिसीव करते हैं तो ह्यूमन उसमें भी वो ट्रांसमिट होता है. अभी रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखी थी बड़ी सुंदर. हेमा मालिनी से पूछा किसी ने शी मैरिड ए मैन हु वाज ऑलरेडी मैरिड. अब देखिए तो चीज़ अजीब लगी ना मॉरलिस्ट को. तो उससे पूछा कि आप एसेंस बताइए आपका जो संबंध रहा धर्मेंद्र जी के साथ उसका एसेंस. तो बड़ी सुंदर बात उसने बोली. कहती है He is my sole love. Nothing else I want. आपको कि ये मतलब समाज से क्या कैसे कहते हैं He is my soul. मेरे आत्मा का प्रेम इन्हीं से है. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. ह्यूमन लव में आप बिना डिवाइन टच के ये संभव नहीं है. इसीलिए पहले वो इमोशंस को शुद्ध करके भगवान की ओर मोड़ना. एक बार आप भगवान से उस प्रेम को रिसीव करते हो फिर आपको किसी से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है. यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग. लेकिन आपके अंदर से जो प्रेम निकलता है वो शुद्ध होता है सुंदर होता है और दिव्य होता है. जय मां.